नंद जी के सामने, सब लोगों के सामने में इस कृष्ण को मारा जाए। और उस समय जब कृष्ण सभा में पहुंचते हैं, तरह तरह के लोग कृष्ण को तरह तरह के रूपों में देखते हैं। मल्लाना
असन
इत्यादि के रूप में मल्ल लोग देख रहे हैं, ये तो प्रभात पहलवान है। फिर कंस देखा, कृष्ण ने क्या, कंस ने साक्षात मृत्यु के रूप में देख मृत्यु बोध कर दी। स्त्रियों ने उनको कामदेव के समान निशाधारण रूप में रसस्थ रूप में, माताओं ने उनको पुत्र के रूप में, सखाओं ने अपने सखा के रूप में, और उनको हंसते हुए देखा, मुस्कुराते हुए। विष्णुओं ने उनको पर्व देवता के, योगी ने पर्व पर्व के रूप में उनको देखा,
कृष्ण नाम पर देवता
और देवता के रूप में देखा। अर्थात इतने प्रकार के लोग थे, सब लोगों ने उनको बारह रूपों में देखा। जाति रही भावना जैसी, देखा जिस रूप में, जिन लोगों ने देखा जिस भाव में, कृष्ण के प्रति जैसी भावना थी, किसी ने शत्रु के रूप में, किसी ने मित्र के रूप में, सखा के रूप में, पुत्र के रूप में, किसी ने प्रियतम के रूप में, साधारण लोग जैसा देखते हैं उस रूप में कृष्ण को बड़ा ही सुंदर फल मिला, एक किशोर रूप जैसा उनको देखा। इस तरह से कृष्ण को कोई राजनीति के मानते हैं तो वो माने, कोई उनको वीर मानते हैं तो वो माने, कोई उनको सत्यवादी मानते हैं तो माने, जो उनको और तरह का बड़ा दयालु मानते हैं तो माने, कोई उनको वो ब्रह्मण ही ताय इस मंत्र के द्वारा प्रणाम करते हैं। वो क्या मंत्र है? नमो ब्रह्मण
देवाय,
कोई उनको परमात्मा के रूप में मानते हैं, कोई उनको जगत उनसे सृष्टि होती है ये भी मानते हैं, सब कुछ वो मानते हैं। ठीक है, उसको तो वही कृष्ण ब्रज में किसी के प्रिय सखा है, किसी के पुत्र हैं, परम प्रिय पुत्र हैं, किसी के प्राण प्रियतम बंधु हैं, और किसी के चरणों में सेवा होती है। जिस रूप में उनको देखो उसी रूप में उनको देखा जाए। आज समय अधिक हो गया, 7 बज गया है, कल से हम लोग 5:30 बजे हम लोग बैठेंगे और 6:15 में हम लोग समाप्त करते हैं। और
उस आत्म जगह पर अंतर में जैसे कृष्ण का अंतर बाहर ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ऐसे ये प्रेम है कृष्ण का प्रेम, ऐसे पर ब्रह्म जो कृष्ण है और जो उनकी स्वाभाविक की जो शक्ति अभी बदला है, लोगों ने स्वाभाविक शक्ति जो वेदों में बात बताया गया है, परार्थ शक्ति इत्यादि, इन दोनों को भी नचाने वाला कोई एक है? वो कौन है नचाने वाला? जो कृष्ण को नचाता है, गोपियों को नचाता है, यशोदा मैया को नचाता है, सारे विश्व को नचा देता है, वातावरण को नचा देता है और अपने भी नचता है, वो क्या है? वही है कृष्ण, वही सब वेदों का आराध्य प्रतिपाद्य विषय कृष्ण होने पर भी है प्रतिपाद्य विषय वेदों का प्रयोजन इत्यादि का पालन करने से ये वेदों का प्रतिपाद्य जो सबको वशीभूत करने वाला विचार वाला है, पर ब्रह्म को भी नचाने वाला है, ये
लीला कर लो
जी सर्वम भूतम सब विजानों को करते हैं, किसको करते हैं हाथ धो देवी वार्ता मथुरा में ऐश्वर्य देवी लाए हैं, मथुरा से भी ऐश्वर्य देवी लाए वार्ता में प्रकट ब्रज में उनकी ऐश्वर्य देवी जाओगे कभी माथुर देवी लाए उसमें प्रणाम होगी ऐश्वर्य को भी करते इस माथुर देवी जाने भी उनके तीन स्वरूप हैं बाल लीला पवन लीला और कई स्वरूप हैं ये तीन मथुर लीला के अंतर्गत मथुर में भी ये जितने भी गोकुल में उनके बाल लीला हो अढ़ाई तीन वर्ष तक ये भी मथुर लीला ही है क्योंकि नव लीला का रूप किया बच्चे बन करके रूप किए पर्वत नहीं बदल सकते अपने ऐश्वर्य को उन्होंने आच्छादित कर दिया और सरकार लोग लीलाओं जैसा वो अपनी लीला को मथुरा में गोकुल में बाल लीला और वृंदावन में आए पवन लीला साढ़े तीन बरस से लेकर पांच छह बरस तक प्रधान रूप में छह बरस से लेकर और दस वर्ष की लीलाएं गोवर्ण में आती है गोवर्ण में जब चलने फिरने लगे बछड़ों को चराने लगे अभी गैया को नहीं चरा रहे बालकों के साथ में इधर उधर घरों में चोरी करते हैं ये गोवर्ण लीलाएं और किशोर लीला राष्ट्र लीला इत्यादि वृंदावन में नित गांव से आते हैं हंडी लीला हंडी मन की लीलाएं ये सब जो लीलाएं हैं ये कई स्रोत लीला अभी कृष्ण अभी थोड़े दिन ही उनका जन्म हुआ है महीना भर भी नहीं हुआ चारों तरफ में मथुरा में और सब जगहों में ये फैल गई बात कि नंद के घर में एक लालक हुआ है जो उनकी प्रौढ़ावस्था में जन्मा प्रौढ़ा माने अभी 50 वर्ष से करीब हो चुके हैं उनके केश काले और सफेद दोनों मिल चुके हैं उनको पुत्र नहीं होता था शंकर जी की कृपा से आशुतोष की कृपा से परजन्य महाराज की तपस्या से उनके घर में एक लाला है बहुत ही अलबेला सुंदर भी बचपन में ही इतना सुंदर है टोलियां की टोलियां गोपियों की आ रही है और दूसरी जगह से जो आ रहे हैं शंकर ने यह बात कैलाश में सुनी उन्होंने देखा कि हमारे आराध्य देव आए हैं इसलिए अपने बैल पर चढ़कर कृष्ण हाथ में ले लिया अपने आभूषणों से सज गए आभूषण क्या सांपों की माला सांपों की हाथ में यहाँ कमर यहाँ पर कमर में और वृद्धशाला या व्याग्रशाला पहन लिए और डमरू बजाते हुए गोकुल में पहुंचे उनका दर्शन पाना चाहते हैं साधारण जो ब्रजवासी हैं उनको तो दर्शन दे देंगे ब्रह्माचल में जाते को कुछ ध्यान में भी नहीं आते हैं और शंकर जी देखे जी अब प्रकट हुए हैं गोकुल में इसलिए वहां पर उपस्थित वहां आकर के अपना त्रिशूल उनके दरवाजे के पास ही में काट दिया और वहीं पर बैठ करके अलग अलग जगाने लगे जो नंद का लाला हुआ उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ तो जो सुधा मैया ने प्रण कर दिया कि मैं नहीं दिखाऊ कहीं नजर लग जाएगी उसकी इसलिए उन्होंने हट कर दिया कि इस बच्चे को नहीं दिखलाऊंगी किंतु शंकर ने देखा कि मैं इतनी दूर से आए जरूर उसका दर्शन करना है इसलिए उन्होंने भी कर प्रतिज्ञा कर ली कि दर्शन करके ही जाऊंगा भक्त और भगवान में ठन गई भगवान दर्शन करना नहीं चाहते और भक्त दर्शन करना चाहता भक्तों का भट भगवान को रखना पड़ता है पहले तो वो सो गए जब देखा शंकर जी ने नहीं उठ रहे दर्शन नहीं दे रहे
डुबड़ू बजाना।
उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा और डबरू बजाया। बच्चा नृत्य से जैसे डर जाता है वैसे डर कर बहुत जोर से रोने लग गए। इतना भैया मनाए और सब लोग मनाए वो माने गई बस से रोता रहा खूब जोर जोर से, किसी तरह से उसे चुप नहीं करा और ये डबरू बजाता। लोगों ने कहा सखियों ने अरे सखी जसोदे अपने लाला का उसको दर्शन करा दे ये तो बच्चा तुम्हारा सत्संग रोएगा। कैसे दिख रहा हूँ इसकी नजर लग जाएगी सांप लेकर के पहन करके देखा है त्रिपुण धारण किए हुए है डबरू और त्रिशूल या फैन का वेश बड़ी बड़ी जटाएं हैं मैं नहीं दिख रहा किंतु जब बच्चा अधिक रोने लग गया चुप भी नहीं हो तो सब क्यों करने से तैयार है। उन्होंने बच्चे के हाथों में काले काले धागे और कुछ में धूप का शर्ट लगा रहा था पहना दिया। आंखों में काजल और काजल कोना से बढ़ा करके एकदम कानों तक लगा दिया और काला यहाँ पर तिलक लगा दिया लगा काजल लेकर के लगा काले कपड़े से उसे ठक किया और गोदी में ठक करके गई जहाँ प्रसन्न करके थे और शंकर जी को कहा जैसे देख और ये कहते हैं एक झलक तुमको दिखलाया और फिर ठक करके शंकर जी ने इसलिए नहीं अपनी शंकर राम कृष्ण इनको बराबर नहीं करना चाहिए। ये करना नहीं चाहिए। शंकर जी सब समय दास हैं, संसारिक चीजें दे देंगे कि उसे सुख और शांति नहीं मिलेगी। भगवान जी दे सकते हैं यदि उनसे कोई मांगे, इसलिए कंस की तरह हम उनकी पूजा नहीं करनी है। कंस रावण जरासंध जैसे शंकर जी की आराधना करता वैसे नहीं करना है। शंकर को वैष्णव में श्रेष्ठ मानना चाहिए। इस प्रकार से कृष्ण ने एक झलक दर्शन उनको दिया। उसी जगह में मथुरा में एक कुंडली लड़ाती थी, कुंडली माने कुंडली, कुंडली किसको कहते हैं फल फूल लेकर के साग सब्जी फल फूल लेकर के घर घर में वो बेचती है। फिर लगाती हुई बेचती थी उसको मालूम पड़ा थे ये बहुत सुंदर लाला हुआ वो भी दर्शन के लिए बड़ी उत्सुक हो फल ले लिए मथुरा से अपनी टोकरी में भर कर नंद भवन के सामने में जाकर फल लो गाते हुए महल के चारों तरफ में घूमने लगी। आज कृष्ण ऐसे नींद में आ गए हैं कि वो सूझ नहीं है। और भी कुछ दिन गई नहीं मिले दर्शन नहीं हुआ किंतु आज उसने प्रतिज्ञा कर दी कि आज तो हमको दर्शन जरूर करना है। यह सोच करके बोल तुझे आवाज लगाती हुई फल लो सब्जी लो ना कर करके गोविंद लो दामो कर लो माँ फलो इस प्रकार से कर लो गोविंद दामो धर्मास्त्री गोविंद दामो लपट थपट कर चलते हैं कहीं गिर जाते हैं इसलिए नंगे हैं बिल्कुल, और केवल माता जी ने सोने की करधनी यहाँ लगा रखी है, एक मोर का पंख उनके केशों को बांध करके उसमें लगा दिया है, छोटी सी बांसुरी जन्म से ही उनके साथ में रहती, बांसुरी को छोड़ते हुए जब जन्म हुआ शायद जन्म भी सब के पास थमक थमक कर चलते हुए मैया की गोदी से उठकर किसी प्रकार से दरवाजे को पेट के बल पर इधर से उधर कर करके पार करके और उसके निकट पहुंचे, देख करके उनका रूप उन्मुक्त हो गई निश्चय, देखते एकदम तन्मय हो गई। कृष्ण का ये फल दो अभी ठीक, अभी आवाज नहीं, अभी बच्चों बच्चों जैसी आवाज फल दो इस प्रकार से करने लग गए। आप वो देखते रहे एक तक, थोड़ी देर में जब होश हुआ, जब कृष्ण घर से गेहूं अनाज लेकर के इस प्रकार से आए थे, किंतु इधर से सारे इतने गए, दो चार के दाने यहाँ पर अटक गए बस, और बाकी सब गिर गया। करें सामने खड़े होकर के फल दो क्या फल दो, कौन फल देगा? दो तरह से फल, एक अपने कर्मों का सब फल हमें दो, अपने कर्मों का फल, अपना कर्म करो किंतु कर्म का फल भगवान को दो। वो पैसे के लिए आई कि फलों को बेच करके मुझे किसको दो, भगवान को दो। हे प्रभु, हमने जो कुछ खाया पिया जो कुछ करते हैं सब आपके चरण, जब ये हो जाएगा तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो कर्मों को भी जलांजलि देकर के सब कुछ भगवान के भजन करने के लिए उनकी सेवा करने के लिए करेंगे, कृष्ण का अर्पण कर उस समय कृष्ण के लिए जो हम जो कुछ करेंगे आप फलों का जो अर्पण करते हैं इसमें बहुत अंतर, इसको कर्म विषय भक्ति करते हैं और उसको शुद्धा भक्ति करते हैं। जब कृष्ण के लिए मैं कृष्ण की हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये तो भक्ति हो जाएगी। और मैं करने वाला हूँ तब तक इसका फल देता हूँ, भगवान को देता हूँ, बाकी कर्मों का तो फल अपने पास रखना है, इसलिए उसको संसार चक्र में घूमना पड़ेगा, किंतु उसको बहुत कुछ लाभ हो जाएगा। अंत में भगवान की बात उनको भी सारो संकेत कृष्ण ने कहा कि फल दो, उसने कहा कि फल तो तब दूंगी एक बार तुम उनको मैया कर दो। उनसे कहा कि इसको मैया कैसे कर दे, इस जाति को जब तक तुम एक बार मैया नहीं कहोगे और हमारी गोद में नहीं बैठ जाएगा तब तक नहीं करेंगे, हमारी गोद में बैठ जाओ और एक बार हमको मैया कर दो। इसकी गोदी में बैठ जाएंगे और लोग देखेंगे कि आप पवित्र हो गया, ये कैसे बैठ। उन्होंने इधर देखा उधर देखा, फल की बड़ी लालसा, सबसे बड़ा फल क्या है, मैंने आपको अपना सर्वस्व तुम्हारे चरण में, और तुम सब ने गोपियों के भाव अनुसार में कृष्ण के चरणों में दिए, ये तो सर्वप्रथम लेकर गोपियां दे सकती हैं कृष्ण को, कृष्ण को वो अपने बाल गोपाल के रूप में गोदी में बैठाना चाहते हैं। कृष्ण ने देखा जो कोई देश तो नहीं रहा, पहचान तो यहाँ पर कोई नहीं था इधर उधर में, और उसी समय में झट एक शहर के लिए उसे गोदी में बैठे और मैया खड़ा करके हमें ऑफ करो और उठ करके खड़े हो गए। वो तो गर्दन तो ऐसी हो गई और चाहती थी कि हम अपने टोकरी का सारा जो जितना फल है इसके हाथों में दे दें, किंतु कृष्ण की हथनी किसी छोटी की जरूरत नहीं था, एक फल देने से ही एक सुंदर सा आम मिठा देने में या एक कमी का अमरूद देने में वो भर जाएगा, इसलिए वो उठा करके उसके हाथों में कितना आय दिया किंतु कितना आएगा थोड़े से भी भर गया। मतलब क्या, यदि कृष्ण को कोई थोड़ा भी दे तो कृष्ण उसको पूर्ण मान लेते हैं, दो तो तुम सही, थोड़े को बहुत मानते हैं, यदि कोई थोड़ा सा अपमान की थोड़ी सी गलती करे तो कृष्ण उसको उसके वशीभूत उसके प्रेम के भक्त हो जाते हैं। उनको चीजों की कमी नहीं है, उनको भाव की जरूरत है। इसलिए उसने दिया, उनके हाथों में थोड़ा सा फल दे दिया, एक आम या दो आम या एक और उसने काम उसे दे दिया। और कृष्ण ने ऐसे हाथ कर फिर न जाए हाथों में कहा आएगा तो ऐसे दे दिया दो चार दिन के हाथों में था के तरफ में। और कृष्ण झूठ प्रमो करते नित्य करते थे, भैया 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 कहते थे, भैया की अंचल में उन्होंने भैया ने दे दिया, ये कहां से लाया। बड़ी प्रसन्न होकर के उसको बांटने लगी, जितना बांटती है उतना ही पति होता जाता है। जितने हजारों गोपियां थी सब लोगों को उसने दे दिया और तब ही उनके हाथों में जितना था उतना पड़ा रहा। इतना मधुर इतना स्वादिष्ट यदि कोई अपना कर्म फल यदि कोई उनको दे अपनी भक्ति दे तो और मीठी हो जाती है, कृष्ण से संतुष्ट हो जाते हैं। आप नहीं संतुष्ट प्रेम चाहिए, यदि हम कुछ देते हैं ऊपर से देते हैं प्रेम से नहीं देते तो कृष्ण नहीं देते। एक तो प्रेम से कोई छोटी भी चीज पात्रम पुष्पम फलम रोयम रोमेन प्रयचती तदम भक्तम स्नानी प्रजता। जो लोग बड़े सावधानी के साथ प्रेम के साथ में थोड़ी भी की चीज क्या पत्र पुष्प फल जो कुछ भी देते हैं मैं प्रेम से ले लेता हूँ, किंतु प्रेम से नहीं देंगे तो दुर्योधन का मैं अभी शबरी की जूठी देव के और विदुर की विदुरानी का केले का शीशा खा करके भी कहते हैं कि द्वारका में हमारा कितना मधुर पूछती उसके प्रशिक्षित होते हैं। इसलिए उन्होंने दिया उन्होंने बांटा तो अभी पूरा नहीं हुआ। आइधर कृष्ण अपनी झूठती ही चाल से सुंदर मुखड़े से उसके तरफ निकल उसको ला करके देखा और वक्र आंखों से उस मंकिम नेत्रों से देखा, उसका हृदय में जो था वो सब कुछ उसका हृदय दे दिया। ठगी सी रह गई, बैठी की बैठी रह गई, उठने का भी उसे होश नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद में संभली और संभाल करके टोकरी को उठाया, उस समय देखा कि टोकरी में कुछ है नहीं, कपड़े से उसे करते खर्चे नहीं। एक भी कर्म का फल यदि दिया जाएगा उसके सारे कर्म समस्त नष्ट हो जाते हैं। आप कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करता है धीरे धीरे, इसे टोकरी तो खाली हो गई चीज पर ले लिया चलती गई और टोकरी भरती गई। जब यमुना के निकट में आई देखा कि टोकरी बड़ी खाली हो रही, उतार करके देखा रत्न जवाहरात और हीरे से भरी हुई, क्योंकि धन की लालसा कुछ थी पहले इसे उसमें भर गए। उसने उठाया और जमुना में उस टोकरी के समेत उसको घर नहीं लौटी, कहां गई किधर हो गई पागल होकर कोई पता नहीं लगा कहां गई। कपिलदेव जी की मैया देवहूति जैसी शरीर की सुकृति छोड़ करके कृष्ण प्रेम में मतवारी होकर के बावली होकर के कहां कहां दूर हो। आज जब उसका कर्म को समाप्त करके कृष्ण उसको अपने गोलोक वृंदावन में ले गए, यदि उतना को मार करके माता का भाव लेकर के और कृष्ण को मारने के लिए आई और उसको गोलोक में स्थान दिया, इसको कहां स्थान देंगे, उसे तो ऊपर का स्थान मिलना चाहिए। इसे जरूर ब्रज की कुंजड़ी में काफी है उन्होंने और वो प्रतिदिन कृष्ण के पास में आकर के उनको फल चखाती होगी, ऐसी उसकी जरूर शुरू कर दी। ऐसे कृष्ण का छोड़ करके और किसका भजन करें। इसलिए अनन्य चित्त से कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो ये ब्रह्मा के उपास्य राम नृसिंह कल्कि पावन इनके भी मूल अंशी स्वयं कृष्ण भजन नंदन वशीभूत हो जाते हैं, ऐसा भजन आपको देवी देवताओं को जो सम्मान देना है ऊपर से सम्मान दे करके कृष्ण की आराधना के लिए उनसे कृष्ण की भक्ति मांगेंगे, दूसरे किसी की आराधना नहीं करनी है। ब्रज में जन्म लेकर के मथुरा में जन्म लेकर के यहाँ आकर एकांतिक रूप से राधा और कृष्ण का भजन करना है। कृष्ण का भजन करने से आधा भजन होता है और राधा जी के अनुग्रह में जुगल की सेवा करने से वो पूर्ण होता है। इस चीज को समझना चाहिए। आत्म परहित सुर ब्रज नहीं जानी। जिसमें गर्मी नहीं है, प्रकाश नहीं है, वो सूरज नहीं है। सूरज है, प्रकाश नहीं है, ताप नहीं है तो सूरज नहीं। ऐसे राधा जी नहीं है तो कृष्ण नहीं है। आधा से भी पति कम हो जाता है। इसलिए राधा जी के साथ में जुगल जोड़ी की सेवा करने के लिए, भजन करने की चेष्टा करनी पड़ेगी। सदगुरु जिनको सदगुरु नहीं है, सदगुरु को अपनाए। भागवत के पक्का हो, भागवत के रसिक दृष्टा हो, ब्रज के भाव जितने हो, ऐसे सुंदर भाव वाले गुरु वैष्णव के संग में भगवान का दर्शन करना चाहिए। मैं तो लाखों कोटि जन्म में भजन करने से नहीं, एकांतिक रूप में राधा कृष्ण को भजन छोड़ करके पूछ नहीं किसी का, और राधा कृष्ण का भी भजन करेंगे तो केवल मात्र उनकी सेवा उनको प्राप्त हो और भी प्राप्त कर लेंगे। इसको कहते हैं एकांतिक भाव। यही एकांतिक भाव भजन करते करते गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोग धीरे धीरे व्रत की गोपियों का भाव प्राप्त करते हैं, जिसका हम लोग अभी पाठ कर रहे हैं। आज रात अधिक हो गई है, इसलिए आज हमने संक्षेप में थोड़े से उनके बाद से उनके दिन रोके।